chapter. And yet you are taking our Lord. I'm taking poison. Really, you are giving up poison or you are taking really poison or not? This realization should be. If in Vaishnava Sangha we are not realizing, then we are like Aparadhi. You should explain this all. Yeah. We should practice all the songs. Then by practicing only one song, you will be liberated and you will have Krishna prema.
Children have ordered me to explain this song.
Gurapahun
Nabajiya Minor. So Narottam Das Thakur is taking the part of our own hard hearts and lamenting that I did not worship Lord Gaurachandra, and thus I have neglected the purpose of this human form of life.
What you told Gurapahun, I should.
I have not worshipped Lord Chaitanya.
No. Na bhajaniya.
I have not done bhajan.
I have not served.
Sir.
By any of my senses. This is the meaning. Not doing archan. Archan we can do. But really, we should try to serve Krishna, Mahaprabhu. With all our senses, actually, that washing is nothing.
I have not served Lord Chaitanya with my senses and with my heart, and thus I have given up or neglected the treasure of praying that he has offered. That what kind of praying, that Braj praying, service to Srimati Radhika, that Lord Chaitanya came to give. And thus I've lost that great treasure.
Then you should also know the name of Chaitanya Mahaprabhu. Can give Krishna prema. So this prema is like ratna, jewel, like life and soul, more than that. If anyone is realizing this, how he will be in collecting lust? Oh, you should explain. Lust and how he will be busy for collecting worldly the things of sense gratification, never and never. So they should know that the life, the goal of the life is Krishna and Mahaprabhu. Then
he's continuing that I've given up what's actually valuable, that is association with pure devotees, the process of bhakti, and I've taken trifles, very insignificant things as significant. This is also explained by Sri Viswanath Chakravarti Thakur as Asat Trishna, having thirst for temporary insignificant things like material enjoyment, heavenly enjoyment, liberation. So Sri Narottam Das Thakur is lamenting for us that I've become attached to trifles, to profit, adoration, and distinction, and given up that which is really valuable in my life, which is Krishna consciousness. And the causes, my own misdeeds. One gets bhakti from the association of bhaktas, and one gets that association in a deep way by many, many births of Sukritis and sun stars. So Srila Narottam Das Thakur is lamenting, due to misdeeds. I've chosen the wrong path of being attached to insignificant things, and I've given up the significant, that is following the path of Hari, Guru, and Vaishnavas. Then he's further lamenting that I have not taken shelter of Sadhu Sangha, which is the only means to advance in spiritual life. Three times, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. All the Shastras say that only by that association can one achieve perfection, which is Braj Prem. So he said that I'm being choked or strangled by my own past karma, and because of that, I've taken the association of non-devotees, as Sri Govinda Das prays. For my own perverted happiness, I'm taking shelter of and serving non-devotees, those who are attached to the opposite sex, those who are attached to such associations, to Mayavadis and non-devotees who want to serve their own senses, because I want to serve my own senses. So I'm being strangled by the knot of my fruitive work. He concludes that engaged in this kind of life, what kind of happiness am I getting? I'm getting only suffering, and I'm tasting that suffering as happiness. As Srila Lochandas Thakur prayed, I'm taking some snake around my neck and thinking it's a garland. I'm inhaling a philosophy flower, trying to get some enjoyment and only getting insects in my nose. So in the same way, Srila Narottandas Thakur is lamenting that trying to enjoy the sensual happiness, what pleasure am I getting in my life? Nothing. Therefore, what is the use of my life? I should have died long ago. Srila Gurudev often speaks this song in relation to that milk that wanted to jump over the pot and leave its life because it felt that I have no good service to offer Krishna. So Srila Narottandas Thakur is teaching us how to think, not just doing archan by rules and regulations, but actually the feeling in our heart and lamenting that we should serve Chaitanya Mahaprabhu with all our senses, otherwise what's the use of this life?
Very good. Should we arrive this truth? Otherwise, bhakti cannot come. If you are doing bhajan and you are not attached to bhajan and bhajaniya, attached to other things, money, lust, and other things, your life is ruined. And it may be that in thousands and thousands of births, you will be deprived of this. Fear these things, two things. Asasangatya and Vaishnava Asanga. Dvasanga should be.
Yeah.
तद्भक्ताय अंगश्यामलिं छटा विरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जटं जागुदरोचि संविदधतं पट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभृजं ध्यायेम् वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नैः अपायन मानुन्दिषु मन्दं कृपाम्बुजरि जपर दुःख दुःखे सनातनस्तं प्रभु मास्या भजन रहस्य भजन रहस्य एज फार एज फिर वैसा ही क्योंकि दोनों की तरफ ही हो जाए छोड़ मैं जहां तक मुझे याद है मैंने पहले भजन रहस्य का चतुर्थ अध्याय मैंने शेष कर दिया था और पंचम याम में हम आ गए थे या पंचम को भी हमने समाप्त किया था फिर भी हम पंचम से हम आरंभ कर रहे हैं अपराह्न कालीय भजन अर्थात दोपहर के बाद में जो अपराह्न होता है और संध्या से पहले वो भजन अपराह्न कालीय कहलाता है। कृष्ण गोचारण कर गाय को पानी इत्यादि पिलाकर संतुष्ट कर आ रहे हैं और मार्ग में दोनों तरफ गोपियां अपने भवनों से कुंजों से कुंज लताओं से अपने आंखों से कृष्ण का अर्चन कर रही है और कृष्ण उनका अभिनंदन करते हुए लौट रहे हैं और भजन में कृष्ण आसक्ति अनर्थ रहते हुए कृष्ण आसक्ति नहीं आई। अनर्थ को हमने बतलाया पहले चार प्रकार के असत्तृष्णा स्वरूप भ्रम असत्तृष्णा हृदय दुर्बल और ये चार चार प्रकार के और हैं। इसके अतिरिक्त भी मन वेग क्रोध वेग जीव वेग जीवा वेग उदर वेग उपस्थित यही वेग हम लोगों के हैं केवल छह प्रकार के वेग। ये वेग न हो आदमी भजन कर मन का वेग क्रोध का वेग जीवा का वेग उदर वेग उपस्थित छह वेगों को जो दमन कर चुका है वो गोस्वामी शब्द पाए वे लोग गोस्वामी है। इसके अतिरिक्त भी अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रहण यानी जनसंघ ये तो हुआ निगेटिव निषेधात्मक ये न करना चाहिए किंतु करेंगे क्या उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संग त्याग इत्यादि ये छह प्रकार के संघ है साथ साथ में ददाति प्रतिगृहणाति ये होना चाहिए। इसके अतिरिक्त साधु संघ कैसे हो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कुछ अधिकारी को जान कर उनके प्रति वैसा सम्मान कर, सम्मान माने प्रणाम करना नहीं, यह उसका एक अंग हो सकता है। उनके वचनों को दृढ़ता से पालन कर, साधु संघ माने अनुगमन करना, जैसा कहते हैं वैसे अपने को बना, अन्यथा थोड़े देर के बाद में साधु संघ से बहुत दूर। तत्पश्चात मन नहीं लगने पर भी भजन करना, वृंदावन में रहो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, निरंतर भजन में दृढ़ता के साथ में भजनीय कृष्ण में, राधा कृष्ण में चित्त लगे। किंतु वृंदावन, यह इस वृंदावन में कहीं वृंदावन में आश्रय करते रहे, और नहीं हो सकता है तो जहां कहीं भी है, किंतु होने से यहां गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अनुशासन में यदि वो भजन करता है तो ये समस्त रूप गोस्वामी के विचारों का ये सार मंथन है, निचोड़ यही है, उपदेशों का सार यही है। ऐसी निष्ठा हुई, इसका अतिरिक्त भी और कुछ अनर्थ है, लय विक्षेप प्रमाद अप्रतिपत्ति का साय, इसके अतिरिक्त भी और है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये सब पर विचार किया है, इसके बाद भी प्रतिष्ठा इत्यादि को नहीं छोड़ा, तो ये प्रतिष्ठा फिर सब दुर्गुणों को ला देगी। इसलिए बहुत से ऐसे अपराध हैं, आसक्ति में दूर हो जाते हैं आसक्ति तक, किंतु बहुत से ऐसे अपराध हैं जो सक्रिय नहीं रहने पर भी उसके हृदय में रहते हैं और भावावस्था तक भी कभी भी वो प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए भरत को दिखलाया, क्या दिखलाया, घरबाड़ी स्त्री पुत्र परिवार सबको छोड़ करके आए और फिर भी एक हिरण के प्रति आसक्त हो, सब चुप छोड़ करके एक हिरण पास सब कुछ छोड़ करके आ गए, एक पुरुष पर या एक स्त्री पर आसक्त हो गए, सबको छोड़ करके आए थे, प्रतिष्ठा में आसक्त हो गए। प्रतिष्ठा बढ़िया, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अरे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं क्या है, भक्ति का प्रश्न है। ऐसा कोई कर्म न करो जिसमें इसमें आसक्त होकर के भक्ति के विचार छोड़ लगे, जब छोड़ा तो सब छोड़ो। इसलिए वैसे संग को दुसंग समझकर जिसमें भक्ति बाधित होती है उस संग को भी छोड़ो, कनिष्ठ मध्यम इसको भी छोड़ो, कनिष्ठ में भी मध्यम में भी जो उत्तम है या कनिष्ठ में जो फेवरेबल है उत्तम की तरफ में बढ़ रहे हैं, ऐसे वैष्णव के संग में अपने से उन्नत वैष्णव के संग में रहो, बराबर से भी काम नहीं चलेगा, अपने से उन्नत वैष्णव और उनके चरणों की सेवा करो, जैसे वह बतला है क्या वो भजन विज्ञ, भजन विज्ञ इस पर जोर दो अधिक, जो भजन करना चाहता है वो भजन विज्ञ संतों शुद्ध संत का संग का अनुगमन करे, और नहीं तो तिल तिल में कितनी विघ्न बात है, शरीर छूट जाए प्राण छूट जाए किंतु फिर भी भक्ति का विचार नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, हम समिति के लिए नहीं आए, साधु संघ के लिए, गुरु के लिए। समिति जब तक फेवरेबल है, कोई ट्रस्ट जब तक भक्ति का जो कोई क्या है समूह है, भक्ति का प्रतिष्ठान है, जैसे समिति है, गौड़ी वेदांत समिति है, गौड़ी मठ है, चैतन्य मठ है, हम इसके लिए नहीं आए घर से, इसको तो जानते नहीं। हम घर भक्ति के लिए, जब तक उसमें देखेंगे हरि गुरु वैष्णव की प्रधानता है और वे भजन परायण है, तो उनसे हम सीखे। मान लिया कि जैसे वो न रहे और भक्ति का विचार करने वाला उस संस्था में नहीं रहे, तो उसको ले देकर के क्या लाभ होगा। हम संस्था बांधने के लिए नहीं है, हम भजन करने के लिए है। इस प्रकार का विचार करके रहे तब तो भजन होगा। और उस समिति में और भी जितने व्यक्ति हैं सबका कल्याण होगा, अन्यथा उस समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए रूप गोस्वामी के इन विचारों को पालना, ये निष्ठा तक हुई, कुछ रुचि तक आई। रुचि हमने दो प्रकार के बतलाए, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय। वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा रखती है, भगवान का तो दर्शन नहीं किया, ठाकुर जी का अंगराग बहुत सुंदर है तो उसके प्रति रुचि रहती है, देखा वाह कहां से ये मूर्ति है, जयपुर से, किसके यहां से, पांडे के यहां से, और तब से उसी लिए इतनी सुंदर। हमारे चलो बाबा जी थे नवदीप के, बाबा जी गौर किशोर दास महाराज के शिष्य थे वो, जिसको गुरु महाराज दर्शन करने के लिए गए, बंसीदास। अपने विग्रह को नंगी रखते, कभी पहना देते कुछ, और उनसे लड़ते झगड़ते प्रेम पूर्वक, प्राण के समान उनकी आसक्ति रुचि थी। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षण, कीर्तन और मृदंग सुंदर बज रहा है और बेहला हारमोनियम बज रही है तो कीर्तन हो रहा है बड़ा सुंदर, आह गए तो प्रेम से हृदय हमारा सुशीतल हो गया। और ये कुछ नहीं है, कोई उच्च कोटि के वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, तभी उसमें रुचि। इसको भी पार करने के बाद में तब आसक्ति आई, यह कृष्ण आसक्ति कैसे, पहले भजन में होगा, श्रवण कीर्तन इत्यादि में आसक्ति हो जाएगी, हरिनाम छूटने से छूटेगा नहीं। एक लाख हो रहा है कि 2 लाख कि 3 लाख, हिसाब नहीं, क्यों नहीं हो रहा। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी का नहीं लिखा जो कितना संख्या पूर्व करते, अरे एक नाम करने भाव विवश होकर के गिर पड़े मूर्छित होकर के, और उन भावों को ग्रंथ के रूप में संग्रह करना है, 1000 बार दंडवत प्रणाम करना है, स्तव स्तुति करना है, स्तव स्तुति लिखना है, सारी रात बीत जाती है, कभी एक दंड 24 मिनट कभी सोया कभी नहीं सोया, उन लोगों के लिए नियम क्या है, नियम के अधीन वो नहीं, भजन के अधीन। तो ये भजन कैसे होने चाहिए, भजन के प्रति होगा तो फिर भजनी के प्रति अपने आ जाएगा, कृष्ण अपने आप आ जाएंगे और भजनी के प्रति होगा। इन सब विचारों को ठीक रखते हुए साधन भजन करो, भजन के लिए साधन पर लग जाओ। यदि असत व्यक्तियों का संग होगा तो भजन नहीं होगा, निम्न कोटि के रहेंगे, अपराध करने वाले होंगे, चाहे वो कुछ हरिनाम करते हैं धामी भी रहे, नहीं होगा। भगवान करे उन लोगों से बचा करके रखे हम लोग। ये जीवन वृथा न जाए, गोरा पहलू न खोजिए हम, प्रेम रतन धन फैलाए विषय विषय विशेष विषय विष सतत खाई, क्या सतत खा रहा वो, ये तो हुआ नहीं, अभी किसी से कुछ मिला तो नहीं, इतने यात्रियां हैं 100 साल 2 साल इत्यादि मिला कि नहीं, कुछ पैसे मिले कि नहीं, कुछ कंबल मिला कि नहीं, कुछ और चीज प्रतिष्ठा मिली कि नहीं, ओ हमारे साथ में जो रह रहे हैं हमारा विरोध करते हैं तो उनका सर्वनाश हो जाए, ऐसी ऐसी सतत पीस, ये ऐसी चीज नहीं है, ऐसा बनाता है अटैच बाथरूम बहुत सुंदर और आधुनिक प्रकरण के साथ में लगा रहा है, वाह कितना सुंदर, इस तरह के सब समय दिन रात जो भजन के अतिरिक्त हरिनाम करते हैं वे वही सोचते हैं, तो इसकी गति क्या होगी, बस विषय में रुचि होती, इसलिए भगवान ऐसे लोगों से बचाए। हाँ नाउ यू कैन ट्रांसलेट समथिंग, रामचंद्र है कि चले गए, अच्छा ठीक है, देखो प्रहलाद महाराज पर विपत्तियां आ सकती हैं, आ सकती है विपत्ति, तरह तरह की विपत्तियां आएंगी, आसुक स्वभाव के लिए वो उनके पर आक्रमण करेंगे जो कुछ करें, किंतु प्रहलाद महाराज उनके तरफ में कोई देखता नहीं जैसे क्या करेंगे, भगवान के प्रति अर्पित हुए इसलिए उनके प्रति प्रतिकार नहीं कर रहे, प्रतिकार भक्त लोग प्रतिकार नहीं करते हैं, वो प्रभु पर जोड़ देते हैं कि जैसा ऐसे हम लोग को रह करके निरुद्योग निर्विघ्न रह करके भजन करो, देखो विघ्न आएंगे टकरा करके चलो, हरिदास ठाकुर किसी से बिगाड़ कर नहीं चाहते किंतु हुआ क्यों नहीं, हरिदास ठाकुर के विरोधी हो गए किंतु हरिदास ठाकुर कभी उनके विरोधी नहीं। नाउ स्टैंड अप, अरे कुछ हो तो पता है, कुछ कथा हो, अनेक कथा हो, अनेक फल शेष पर्यंत कुछ स्थिर हो लीजिए कल,
At this time, what is happening in the Kaliyuga of Krishna? That time, after driving cows and giving them water, Krishna is now returning with all suckers and cows back to Vrindavan. That time, all the gopis from various sides of the path and even in various kunjas on either side and in various buildings are worshipping Krishna by their sidelong glances. And Krishna is accepting their glances and reciprocating. But in the realm of bhajan, what is this? This is called the level of a shakti. Shakti means deep attachment. The both bhajan, the process of chanting Harinam, bhakti and the bhajaniya, the object of worship, Sivana Krishna, Guru Devana. So this level of a shakti is only possible once we have crossed all types of anantas or unwanted desires. Four types of anantas. Surupram, Asatrishna, Vidoya Nirupalya, and Aparad. Sri Prabhupada makes forgetfulness of one's identity, satrishna, attachment to useless things, vidarbhaya, weakness of heart, aparad means offense. Each one of these four divisions have four divisions within each of them, a total of 16. But even after crossing these, we'll still have control of all six vegas as described by Sri Prabhupada Swami, Vacha Vegam, Manasakrota Vegam, Jiva Vegam, Udarupasa Vegam, Etan Vegam, Yogisubhetu. You'll have to control the force of the mind, the force of speech, the force of the tongue, the force of anger, the force of the belly, and the forces of the genitals. Unless one is completely controlled, all these six urges, there can be no question of Vajra at all. And only one who has controlled these six urges, he can be called Goswami, or master of the senses. And even after doing this, you'll have to come to remember Goswami. You'll have to avoid six things. It's called the prohibition. Atihara, prayas, chaprajalpa, nimagraha, janasangas, chalomyapka, sarvabhu, sandhidi, bhakti, pranashiti. You'll have to leave 16. You'll have to leave overeating, overcollecting, over-endeavoring for mundane things which are difficult to achieve. Prajalpa, loose talk, unrelated to the service of Hari Guru Vaishnava. You'll have to leave the association of materialistic persons. And you'll have to leave all types of asatsanga. This is called prohibition or things to be avoided. But only avoiding Niyamagraha, not following any rules or regulations. But even after avoiding these six things, there's what will you have to do? You'll have to do some also good things. What is that? Utsahan, Nishchaya, Daija, Tattaka, Avavatana. You'll have to be enthusiastic. You'll have to be patient, you'll have to be determined. You'll have to follow in the footsteps of the Kriyasacharyas as they perform Naravida Bhakti. You'll have to keep association. And you'll have to follow in the footsteps of the Kriyasacharyas as they also maintain their lives. These are called six things to engage positively in. But then in whose sangha will you perform all these things? Then you'll have to come. What is Sadhu Sangha? The Dharma Tikkunati, Guru Market, the Krishna, Bhukte, Gorda, Dekhina, Sutri, Lakshana. How to exchange with a Sadhu? What is called Sadhu Sangha? To give and offer things for the service, to give things for the service of the Sadhu, and to receive his remnants as prasadam. To offer foodstuffs to the Sadhu, and to receive his remnants in the form of Mahaprasad. To inquire confidentially, and to hear confidential instructions from him. This is called Sadhu Sangha. So you'll have to know how to properly associate with a Kanishka, with a Madhyam, and with a Guru Vaishnava. Sangha, Anugama, that means Anu, Gaman, to completely follow the word and lifestyle of the Sadhu. This is called Sangha. Otherwise, it's not called Sangha. Simply staying with Vaishnava is not called Sadhu Sangha. Our mind does not like to do these things, but we have to pause now in this stage, Uripurva, by force of intelligence. You have to stay in the garden and perform bhajan here, even though it's dirty, no good bathrooms here, and it's dirty. Even though you don't like it, you'll have to stay in the guidance of Guru and Vaishnava. You'll have to accept their discipline. You'll have to be controlled by them. You have to accept their chastisement. To be controlled by the Sadhu, this is called Sadhu Sangha. And all this is the essence of the instructions of Guru Goswami. And even after doing all these things, there are still many obstacles. But see, Vishnu Chakravarti Thakur says, after crossing all these further disturbances which appear in the stage of Anishtita Bhakti, then you still have to overcome the biggest problem of all, which is called pratishtha, desire for one's own name and fame. So all these anattas can disrupt one to various degrees, even under the stage of Bhakti. Like Bharat Maharaj. King Bharat was the king of the whole world, and he left everything, his wife, children, wealth, kingdom. But he became attached to a deer. So we have also, to various degrees, left everything, but have we left the desire for pratishtha? You'll have to examine ourselves.
So
we should be very careful that we never perform any activity by body, by mind, or words that will in any way induce any different type of attraction except for attraction to pure devotion, Sudha Bhakti. If you want this type of bhakti, then you'll have to do the association of Uttam Vaishnava, Mahabhagava. Association of Kanishtha or Madhya Vaishnava cannot really help us so much. Even Madhya who's reached the Madhya Uttam stage, you'll have to seek higher association. And associating with those persons who are on the same level as us is also not sufficient to advance. You'll have to find Bhajanam Vigyam, Ananya Anya. You'll have to do the association according to Sri Rupa Goswami Pad of a pure Vaishnava who never criticizes anyone and who is Bhajanam Vigyam, expert in the performance of Bhajan or remembering the eightfold pastimes of Radha Krishna. So we have come here only for these things. We have come here for Sadhusanga. We have come here exclusively for service of Gurudev, Vaishnavas, for Harinam, and for hearing Harikatha. So for this reason we have come. We have not come here to join any Samiti, society, Gaudiya Math, ISKCON, or anything else. So as long as the society is favorable bhajan, then we can accept it. As long as in the society Guru is kept prominent, and bhakti, and instructions of Sudha Bhakti are kept prominent in our lives, then we can have some use for any society. Otherwise we have no use for it, because we have not come for these things. So if everyone in our Gaudiya Math and any other Vaishnava society can always remember these things and follow them, then we will be benefited, and everyone in the association and in the society itself, they will also be benefited. So this is called Nishtha, or fully accepting the conception of Sri Rupa Goswami Pad. So after crossing all of this, even after crossing the stage of Nishtha, or fixed determination, one can come to the stage of Ruchi. Ruchi means taste. Taste is of two types. Vastu Vaishishta Apekshani, Vastu Vaishishta Anapekshani. That means Ruchi, which is dependent upon the super excellence of the ingredients of Seva, and taste, which is independent of the ingredients used in Seva. For example, in the lifestyle of Sri Bansidas Babaji Maharaj, Guru Maharaj said, Apan Gurudev went there for darshan, associate of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He had that very deep type of Ruchi, Vastu Vaishishta Anapekshana. He had his Thakurji. Sometimes his Thakurji was naked, sometimes he fed him, sometimes he fed him. And day and night he was completely engaged in fighting with his Thakurji, arguing. He was not dependent upon any other external ingredients. This is the real type of Ruchi. Someone may see Thakurji. Oh, Thakurji is very nicely decorated. What's he made of? Marble? Did you buy him in Jaipur? How much did he cost anyway? This is low type of Ruchi. There may be kirtan. The madanga is playing nicely, the harmonium is going, the singer is doing many types of Oh yes, that kirtan was very nice. My heart was melting in prem. I felt so much emotion that time. But if ordinary kirtan is going there, and only one Mahabhagavat is chanting with tears in his eyes, we will not have faith in that. After crossing the stage of Ruchi, then we come to the stage of Ashakti. Ashakti means deep attachment. But Ashakti is of two types, for bhajan and for bhajaniya. Deep attachment for bhajan means deep attachment for Harinam and the process of bhakti. And deep attachment for bhajaniya means deep attachment for the Ishtadev, our Ishtadev, Gurudev, Gauranga, Nityananda, Radha Krishna. That's why we cannot leave Harinam or the process of bhakti. It's quite impossible. That time you will even forget how much they chant. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. Like the Goswamis, they had so much deep attachment for bhajan. Then what exactly was their sankha point of a kanam or yam and how much Harinam they chanted? Even they can chant one mahamantra, Hare Krishna, and they may fall unconscious. Every day they are completely absorbed in performing so many hundreds and hundreds and hundreds of dandavats. Nice. Every day chanting and writing so many stars and studies, prayers and offerings. Sometimes they slept, sometimes they forgot to sleep. They completely crossed all means and rules and regulations. Such was their attraction to Bhajaniya. At that stage, Krishna will come, otherwise he will not come. So if you want all these things, dear brothers and sisters, must stay very far away from asat sangha or bad association. Asat sangha may come in various different types. Someone may be staying right with you. He may be living in Vrindavan, but he is against Guru Vaishnava, even though he may be chanting Harinam. If you stay with those persons who are offensive to Hari Guru and Vaishnava, if you stay with them, bhajan will not come. Like Kishore was saying, Gaura Pahu Nabhaji Amani. So because I stayed in Asat Sangha,
Swami Maharaj,
I could not get the jewel, the Prem jewel, which Mahaprabhu was distributing. But we have come here for Parikrama, and what are we seeing? Oh yes, maybe I hope at the end of Parikrama I will get one blanket. Oh, this fellow is my against, I don't like him. Don't you know if you're against me, your bhakti will be destroyed? We are hoping I will get a special room with an attached bathroom. And we are absorbed in all these thinkings. All these useless thoughts, therefore Harinam not coming to me. But what about how is Prahlad performing bhajan? Many, many disturbances came to him. But he never made any endeavor. How can I escape from this? What will I do? How will I do not? He was completely surrendered to Bhagawan. Therefore, he knew Bhagawan will arrange. He never made any endeavor for his own protection. Or like Sri Haridas Thakur. So many were against Haridas Thakur. But Sri Haridas Thakur was never against anyone. He thought everyone is my guru. Hare Krishna.
Then, Pancham Sadhan, Pancham Yam, Aparanna Kali Bhoga. Shikshastak ka, panchva shlok. Ek-ek yam ke liye ek-ek shlok. Ile panchva Aparanna Kali Bhoga, Pancham Yam. Avudhar mein, Shikshastak ka panchva shlok. Ainandatan yakinkaram, Patitam Abhishame Bhavam Buddhau Kripayato Pada Pankaja Sititudhi Shadrisham Vichintaya. Asakti, isme asakti ka varnan kiya gaya. Bhagwan se koi sambandh hona chahiye. Isme Bhagwan ke saath mein sambandh ke liye prarthana kar rahe hain. He Nandatam. हे कृष्ण ने ही कहा हे नंद अतुल ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन ये कृष्ण है मैं आपका किंकर हूं सर्वपता किंकर हूं किंतु आपको भूल करके विषयों में संसार की अंबुधि में इस समय गिर गया कृपया तो पार पर कभी भूल स्थित सदृशम विचिंत कृपा करके अपने चरण पंकजों की चरण कमलों की ऊपर में स्थित एक धूलि के सदृश हमें विचिंत जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास तहा भूलि सही जीव अनादि भयो तव नित्य दास मुई तुम्हा पास रही बढ़िया छो भावर्ण माया भक्त कृपा करी कर्म मोदे पद धूलि सम तुम्हारे सेवक करो तुम्हारे सेवक एक संबंध लगा रहे हैं क्या संबंध मैं तुम्हारा दास हूं पहले यही संबंध हो और तुम हमारे नित्य प्रभु हो मैं तुम्हारा चरणों का एक धूलि की समान की कृपा करके उसी रूप में हमारा स्मरण और भी कहा है हा देव कापु भर गदगद याच देवाचार जाचे निपत्त भोवि दंडवत उर्भटार्थी अस्य प्रसादम अपुथस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निजगणे गणनांदिके। वैसा ही वो कृष्ण के प्रति, ये राधा जी के प्रति, साधारण रूप में पहले कृष्ण के प्रति ही हो और विशेष जानने पर साधु संघ में राधा जी के प्रति हो। हा देवी काकू भर गदगद आदि, मैं काकू भर करके गदगद वचनों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके अपने दासियों में हमारी गणना है, हमारे नाम का उल्लेख कर। भक्त जब रुचि की स्थिति को पार कर आसक्ति दशा को पार करता है, आसक्ति दशा को प्राप्त करता है, उसकी प्रार्थना में दीनता और रोदन होता है। उसकी प्रार्थना कैसी होगी? हंसते हुए कोई प्रार्थना करेगा? हा देवी जहां कर रहा है, हा अई नंद तुम यकीन कर, तो महाप्रभु कैसे रोते थे विरह में, दीनता और रुदन होने लगेगा। जो कोई भी श्लोक कहेगा, भक्ति विनोद ठाकुर उन सबका अनुवाद किया है, रोते रोते अनुवाद किया है, समझ बुझ करके, ये समझ लो इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर समझ लो सब चौपट हो गया। आसक्ति की परिपक्व दशा में सिद्ध देह का कुछ आभास होने लगा। जहां आसक्ति की परिपक्व दशा आई उस समय सिद्ध देह अपने आप आभास होगा, और जो लोग सिद्ध देह नहीं आया, परिपक्व आसक्ति तक नहीं हुई और सिद्ध देह का अनुमान कर रहा, क्या कर रहा, कल्पना करता है, उनका भजन सिद्ध नहीं होता, उनकी सिद्ध देह कभी नहीं आएगी। भजन के साथ भजनीय वस्तु में भी आसक्ति उदित होने लगती है, भगवान भी ऐसे भक्त की पुकार को सुनते हैं। भजन करते करते श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति आदि होते होते रुचि उत्पन्न होती है। इस स्थिति तक के भक्तों की पुकार भगवान के हृदय में अंतर्जामी की राय, जब तक उसकी रुचि रहती है तब तक किसी भक्त की प्रार्थना को परमात्मा के रूप में, अंतर्जामी के रूप में सुनते हैं, कुछ करते हैं। किंतु जहां आसक्ति हुई कृष्ण उस भक्त की बात को, उसकी प्रार्थना को, उसके दुख को, विरह वेदना को दूर करते हैं। निरापराध होकर के नाम संकीर्तन करते करते कृष्ण की कृपा से भाव उद्गम होता है। भाव उद्गम किसको कहते हैं? रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक इत्यादि। अश्रु, पुलक, रोमांच, कंप इत्यादि। कभी आभास हुआ अपने भाइयों के लिए, संबंधियों के लिए, कुटुंब के लिए कभी कभी आंसू आ जाए? कभी गुरु के लिए भी आती है, किंतु गुरु के लौकिक व्यवहार क्यों कि गुरु महाराज जी उपस्थित ने, किंतु उन्होंने जो ये रत्न दिया भजन का, इसके लिए अभी उपलब्धि नहीं हो। जिस समय ऐसी उपलब्धि होगी, दिन रात विरह के अश्रु उसके रुकेंगे नहीं और भाव कभी उसका ऐसा छोड़ेगा। इसलिए कहते हैं निर्बाध होकर के हरिनाम संकीर्तन करते करते कृष्ण की कृपा से भाव का उद्भव, उसमें अश्रु, रोमांच, कंप, पुलक, अश्रु, वैवर्ण, बेपथु इत्यादि। शेडवतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो य भद्राणि विधनोति सुहित सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती न स्थिति तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयस्य चेत एतै अनाविद्धं स्थितं सत् प्रसीदति। श्री कृष्ण के जस का श्रवण और कीर्तन करना दोनों ही पवित्र करने वाले। कृष्ण का यदि जस श्रवण करे, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करे, उनका नाम का कीर्तन करे, उनकी नाम रूप गुण लीला का कीर्तन यदि करे, कीर्तन मैंने मृदंग से करे अथवा काव्य के रूप में करें अथवा अपने आप लीलाओं का श्लोकों का अपने शब्दों में वर्णन करके करें। किसी प्रकार से वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, उनकी अशुभ कामनाओं वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहित। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जार कथा श्रवण कीर्तने पुण्य है। ये पुण्य संसारिक पुण्य मत समझो, जैसे कर्म के लिए हम कह रहे हैं ये पुण्य है, भक्ति भक्ति कृत। श्री कृष्ण हृदय बसिया नासिब है, साधक तेरे अभद्र क्रम नाश करे नाश भक्ति नष्टिक भाव करे न प्रकाश, रजस्तम समुद्भूत काम लोभ ही हृदय हैया हैया भक्त चित्त सत्व है तप्रपेही। इस प्रकार से नैष्टिक भक्ति उदित होने लगती है। गुरु पार पद्म का निष्कपट आश्रय ग्रहण करने के पश्चात ही वासुदेव की कथाओं में यू कैन एक्सप्लेन यू बट वी शुड नो दैट रेडी वी आर सन्यासी आर नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्यास? ओ द ब्रह्मचारी आर सो फुलिश that they have not decided a place of me, sannyasi. I am sannyasi. They should fix a place for me where I will take and take prasad. This is not the meaning of sannyasi. What is the meaning of sannyasi? Gita has told. Nacha sannyasi asakti rahit ho karke karyon ka kaam karne ka naam. Attachment from the worldly sense gratifications and always engaging his all senses in Krishna bhakti, this is really sannyasi. A real sannyasi will arrange everything how bhakti will be done. He will arrange all the uncontrolled devotees. But how he can? So sannyasi be like that. We should be like that. This is the symptoms of sannyasi. We should always be remember that we are sannyasi. No, you should think that I want to be a sannyasi. Really, Guru has not given me sannyas. He has given these things only to have a ruchi in sannyas, actual, not in only vesh. Vesh means outer dress. No, this is not sannyas. Sannyas by heart, and these are the symptoms. Don't seek your position, your pratishtha.
Name and fame.
Oh, how can I sit with brahmacharya? No, first you should place for brahmachari and other grihastha. Oh, your place will be already automatically will be reserved. So always think like so. You should explain these three slokas. Srinivatang Swami. Sitting here,
Shloka of this chapter, Srila Bhaktivinoda Thakur is quoting three verses from Srimad Bhagavatam, second chapter, first canto. Srimatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Prinyantaksto Yavadrani Vipuranti Suhrit Satam. Srimatam Sakata Krishna. So here, Srimad Bhagavatam is telling that by hearing Krishna Kata, by hearing the transcendental topics of Krishna from the lips of pure Vaishnavas, this is Punya Shravana Kirtana. It is very, very exalted, purifying activity. Why? Because Krishna, Hridyantaksto, he is situated within the heart. Krishna is the Suhrit, the well-wishing friend of the devotee. And when the devotee begins to hear about his transcendental topics, then Krishna within the heart acts as a well-wishing friend, and he begins to purify the heart. Vidunoti. He cleanses the heart from so many anarthas. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. So the abhadras, abhadra means very inauspicious things. All the different accumulations of anarthas and inauspicious elements within the heart, which are obstructions to our attempt to render pure devotion. These abhadras become removed by Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavat means two things. The Grantha Bhagavat, the transcendental Srimad Bhagavatam, which is the Rasa Swarup, the very form of Krishna, the transcendental form of Rasa, is Srimad Bhagavatam. And the other type is the Bhakta Bhagavat, the personality of the devotee, who is completely the personification of the Srimad Bhagavatam and has realized the purport of Srimad Bhagavatam, the Rasik Vaishnava, Bhavak Bhakta. He is the personality Bhagavat. So, by rendering service to these two Bhagavats, then all the inauspicious things within the heart become destroyed. Nashta praisho vadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. At that time, when these elements become gradually removed, then naishtiki bhakti, meaning firmly fixed, the stage of nishka, when no longer these elements are obstructing the devotee's attempt to render pure devotion, they become removed from the heart. And then, tada rajas tamo bhava kama lobha dayaschaye e cheta etair anavidham stitam sattve prasidati. So at that time, when the lower modes of nature, rajas and tamas, which are affecting the heart with lust, anger, greed, illusion, envy, and all of these lower tendencies, these become removed by this process. And when this happens, stitam sattve prasidati. Cheta etair anavidham stitam sattve prasidati. The devotee becomes situated purely in goodness stage. And his heart is no longer affected by all of these tendencies, lower tendencies of lust, anger, and greed. And he becomes very pleased and satisfied within his Atma. So by this process of Srimad Bhagavatam Seva and Bhakta Seva, then this process is enacted automatically. If one is a sincere Vaishnava and he is surrendering at the lotus feet of Guru and Vaishnavas, then this process will take place, and he will become purified, and he will be able to enter into pure bhakti.
Very good. Tattenu kampam susubhikshamanu bunjana evatma kritam vipat hridvag bapuhi vidadhan namaste jivet jo bhukti pade sadayava. Tatte anukampam tu samiksha mana. कह रहे हैं जो पुरुष अपने पूर्व में पूर्व जन्मों में या इस जन्म में आज से पहले जो कर्म किया उसके फल को और प्रारब्ध के अनुसार में जो कुछ सुख या दुख होता है उसको भगवान की कृपा मानकर निर्विकार मन से उनका भोग करते हुए तन मन और वचन के द्वारा आपके चरण में भगवान के चरण कमलों में समर्पित करता हुआ जीवन धारण करता है वही मुक्ति के आश्रय स्वरूप भगवान के चरण कमलों के चरण कमलों का अधिकारी है। भक्ति विनोद ठाकुर इज टेलिंग और जिस श्रीमद भागवत इज टेलिंग सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग टू परीक्षित महाराज ब्रह्मस्तुति जो लोग अपने किए हुए कर्मों का फल हाथ डाला आग में तो हाथ जलेगा जिन्होंने बुरे कर्म किए उसका फल भी भोगना पड़ेगा तो इस समय में जानबूझकर नहीं भोग नहीं किया किंतु पहले पहले पूर्व जन्म में या उसके पहले जबकि ज्ञान नहीं था किया तो जो प्रारब्ध के अनुसार में जो कुछ भी कर्म का सुख या दुख होता है उसको भोगते हैं अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं ये प्रारब्ध का कर्म जो फल हुआ है ये भगवान की कृपा ही समझो। किस लिए कृपा कर रहे हैं इसकी व्याख्या में ऐसा कहा जा सकता है जो लोग श्रद्धा निष्ठा रुचि पार करके आसक्ति में आए हैं उनको अपराध की संभावना नहीं होती और अनर्थ रहेंगे निष्ठा में ही अपराध सब दूर हो जाए है वैष्णव स्नान श्रद्धा के समय से ही दूर हो जाता है सब किंतु सेवा अपराध कुछ धर्म अपराध कुछ अवज्ञा जैसी या कुछ ये सब रहता है निद्रा लय प्रमाद उत्पत्ति और वो जो कषाय रसा स्वाद इत्यादि ये सब रह सकता है किंतु रुचि होने पर ये भी दूर हो जाता है फिर रुचि के बाद में आसक्ति समय अनर्थ कुछ रहते हैं बहुत क्षीण रहते हैं और भावावस्था के समय में तो वो छिड़काए मन एकदम प्रभावशील रहते हैं किंतु रहते हैं जब कभी भी उदित हो सकते हैं तो ऐसा मानो जिसको आसक्ति हो गई और उस भक्त को कोई कष्ट हो रहा है हरिदास ठाकुर को प्रहलाद महाराज को पूर्ण भक्ति है आसक्ति भी तक है किंतु मर्यादा नहीं ऐश्वर्य नहीं उनको अपराध हो सकता है कि नहीं जिससे उनको इतना कष्ट सहना पड़ा द्रौपदी पांचों पांडवों के सामने निर्लज्ज करके नंगी करके अपने कर कितना ये इसको कर्म फल नहीं हम मान सकते ये भगवान की योग माया शक्ति का ये क्रिया पड़ा तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा मान करके निर्विकार किसके लिए कहा जिनको आसक्ति हो गई है वो जिनको प्रेम हो गया है प्रेम तो नहीं भाव अवस्था प्रेम रहने पर यह शरीर नहीं है नारद ऋषि को मोह हुआ उनका शरीर अवचिन्मय हो गया है तो उनका जो मोह है चित्रकेतु महाराज जी का जो मोह है वो यथार्थ भरत महाराज को भावावस्था तक प्रवेश हो गया है और उनके पर कष्ट आया या अम्बरीश महाराज के ऊपर में कष्ट आया ये क्या है भगवान की प्रेरणा से ही अब सब है अपराध मत करो यदि ये सोचो कि ऐसा कुकर्म करने से ऐसा ये हो गया है तब तक तो फिर अपराध हो जाएगा तो ऐसा समझ करके उन कर्मों का फल या भगवान की कृपा का फल जो हरिदास ठाकुर को विश्व में प्रचार करना चाहते हैं प्रहलाद महाराज जी को विश्व में प्रचार करना चाहते हैं, ऐसा समझ करके तन मन और वचन से अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। इस प्रकार से समर्पित करके जीवन धारण करता है, जो दुख सब कष्ट आता है उसको भोगता है, निरंतर भगवान भजन में लिप्त रहता है, वही मुक्ति के आश्रय स्वरूप जो भगवान के चरण कमलों का पदाश्रय का अधिकार है। जो ऐसा नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, दूसरों का दुख अपना दुख इधर देखेगा बस उसी में, क्योंकि उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी का संग नहीं है, सामंजस्य नहीं कर सकता, थोड़ी सी विपत्ति आई और तेल मिला उठेगा, भजन तजन छूट जाए। पहले से ही एक आश्रम बना करके रखे, यदि यहां गड़बड़ हो गई तो कहां रहेंगे, पहले से आश्रम करेगा। तो ये सब चीजों को विचार करके भगवान का भजन करो, इसी के लिए आए। रामचंद्र
যারা কর্ম প্রধান ভক্তি এরকম চায়, কর্ম প্রধান যারা ভক্তি প্রধান ভক্তি বানায় পরীক্ষা ওদের সময় নাই, আমি কর্ম প্রধান।
क्या हो गया? इफ यू कैन नॉट देन ही कैन।
ना वो लोग करा है, अभी तो खाली होना के तीन चार सौ रखा करते बोले चले। वो नाम तो तुम लोग तीन करों आओ बोले।
पंचम याम।
एकदम प्रारंभ से भी।
हाँ, हम लोग तीन सौ का रखा करने बताया था।
एकदम रास्ता नहीं मार
का। वही नाम तो तुम लोग तीन करो।
This Pancham Yam relates to fifth verse of Shiksha Ashtakam. Ai Nand Tanuj Kinkaram Patidam Maam Vishmaya Bhavam Vado Kripyatam Paj Pankar Vishu Duli Satrasyam Vishantaya. There must be some relationship. When we relate ourselves, then our prayers are really strong. In the fifth stage, what is the relationship is being prayed. Ei Nand Tanuj. Person, a devotee is not calling him Krishna. He is calling him Nand Tanuj. I am your kinkar. Kinkar means real servant. By nature, I am your kinkar. By constitutional position, I am your servant. Please keep me as particle, just particle of your lotus feet. What does it mean? The devotee, he is relating himself with Krishna as a serpent. He wants himself to be just particle of Krishna's lotus feet. This prayer, ordinarily, in first stage will be for Krishna. And when devotion advances, then it will transfer for Radharani. What will be it? We will say to Radharani, Dandharvi ke tab aadevi kakubar gargar yade vacha yate nimat bhuvi dhant vadu kattati asya prasadam budasya janasya kritva Dandharvi ke tab gane gananam vidai. Hey Radharani, please enroll me in your own being. In the list of your own being, please, this prarthana, this prayer now relates to Radharani, transferring from Krishna. In the stage of Asakti, there will be real humility in his prayer, real. He will cry for whatever form he will pray, whatever shloka he will recite, it will be from the core of his heart, with a menial mood. If we won't pray like this in this life, everything will be finished. In the stage of when Shakti becomes matured, when we advance even in the stage of Asakti, then one realizes to some what extent one's own constitutional position. Then when he realizes his own real constitutional position, he can pray accordingly. Before that, if one is thinking about his constitutional position, this is very much harmful. Imagination and speculation will not work. Up to the stage of Ruchi, prayer goes to Antaryami, to Pramatma inside our heart. Our prayers don't go to Krishna. Who listens to our prayer? Antaryami. When we raise ourselves, advances more from Ruchi to Asakti, then Krishna listens to our prayer. Then there is pulak in our body. Ashru comes, tears comes from our eyes. It's a natural process, not artificial. It may not come for Krishna directly. First it will come for Gurudev. In first stage, even for Gurudev, when we feel like to cry, tear comes for our Gurudev. It is external. For his mercy which he gives, but only externally. Still we are not realizing this fact that what deep thing he has given, the real spiritual thing he has given for us, when we really realize that what real thing he has granted to us, and then we feel like to cry for him, then it is real ashru, real come. And it will be transferred for Krishna.
हो गया? हो गया?
अश्रु कम इज टीयर्स एंड ट्रेमलिंग. व्हेन इट विल कम फॉर गुरुदेव इन रियल सेंस, देन इट विल बी रियल अष्ट सात्विक भाव. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेविया. दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय पूज्यपाद that when really we pray like this, then by mercy of Bhagavat, and he has spoken by Granth Bhagavat and a person Bhagavat, our abhadra, our all unwanted desires are removed from our heart. When we just receive sannyas from Gurudev, what should be our thinking? I am sannyasi. No, this will not do. Like Gurudev has explained all these things in English, so I am jumping from it and Bharat, coming to that stage.
Bharat.
Where, what should be our thinking when any trouble comes to us? When we fall in some problem, in the stage of asakti, a devotee always thinks, whatever problem he is receiving, he is getting because of his old karmas, tatvenu kampam, his mercy, it is Krishna's mercy. He relates everything which is coming to him as mercy of Krishna. This great thinking, what was the stage of Srila Prahlad Maharaj? We have to suffer because of our old karmas, of past life or even of this life, before entering into Krishna consciousness. In the stage of asakti, even from the very beginning, in the stage of Shraddha, we should realize this thing. But when a person comes to stage of asakti, even at Ruchi, the chances of committing Vaishnava offense goes away. In Ruchi, one does not commit Vaishnava aparad. There are many other type of anartha, like nindra, sleep, like alasya, laziness, like pramad, distraction, etc. But at a stage of asakti, all these unwanted desires go. And when one reaches the stage of bhav, they are dormant in our heart, but not they have gone totally. It may be there that they may crop up again at some time. Therefore, one should be very much cautious. In case of Bharat Maharaj, who just fall in attachment with a deer, in case of Raja Chitra Ketu, etc., we should not think that they committed any offense. They are performing a pastime just to give us lesson. Like Amrish Maharaj, he got into a trouble. It is not because of his karma. It is not because of his past life karma. So why these things happen? This is Krishna's desire, and we should understand. These all things is past time, just to be